ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पञ्चाकाशीतिष्ठैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय नमे गौरकृष्णाय हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चनगौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुतेमामि हा देवि काकुभरगदगदयाद्गवाच जाते निपत्तभूर्भटर्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दितचन्दीवरं जाड्दञ्जाबुदरोचसङ्गम्बरस्य श्रिय वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो बलभुजं ध्यायेन् दामो भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना श्रीचरणादि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्ने अपायन्मानन्देऽपि मन्दम् परदुःखदुःखी सनातनस्थ श्रीचैतन्यमनोवेष्टिं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददातु सदा तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति प्रीत्या राधितम् खुला छे ने आवास छे कल हम लोग गोप्यस्त तपः की आचरण जमद्वस्म रूपम लावण्य सारसमोधानन्य सिद्धम दृग्धि पिबंत अनुसवम अभिनवम दुरापेकांग धाम जस्वासी अच्छी हम लोगों ने ये पाठ किया जिसमें मथुरा की रमणीया किशोरिया पा रही ओहो गोपियों ने कृष्ण का यह असमर्थ रूप लावण्य पान किया या करती हैं और वह असमर्थ कृष्ण का जो रूप है अनन्य सिद्धम है। अनन्य सिद्धम मैंने किसी अलंकार इत्यादि के धारण करने से या किसी भी प्रकार से वस्त्र के धारण करने से कृष्ण का यह रूप उद्भासित नहीं होता है। वो न अन्य सिद्धम, उसको भी बंद कर दो। हमको सर्दी जुकाम हो गई, वो अनन्य सिद्ध है और गोपियां जैसे कृष्ण रूप का पान करती हैं, आस्वादन करती हैं, और कोई ऐसा नहीं करता, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये, क्यों गोपियां ही कृष्ण के इस रूप को, रेणु माधुरी को और प्रिय प्रियता वश्य रूप को, कृष्ण ब्रज में जैसे अपने परिकरों के वशीभूत हो जाते हैं और कहीं नहीं, यही एक माधुर्य है लीला परिकर। मैंने ये लीला परिकर के वशीभूत हो जाते हैं जैसे, ऐसे और कहीं जगह नहीं होते हैं। इन लीला माधुरी, वेणु माधुरी, लीला परिकर माधुरी और गुण माधुरी, इनका और कोई करता है करे, किंतु गोपियों जैसा नहीं करता, इसका कारण। और उन गोपियों में भी सबसे अधिक श्रीमती राधिका जी करती हैं। उसके लिए हमारे सनातन गोस्वामी ने एक सिद्धांत इसमें दिया है, स्पष्ट तो ऐसा नहीं कहा किंतु हाँ उसका लक्ष्य यही है। कह रहे हैं इसके पहले उन्होंने बतलाया है, सर्व अवतारी कृष्ण अनंत धामों में अनंत लीलाएं करते हैं, अनंत धाम और अनंत धामों में अनंत लीलाएं करते हैं, किंतु उनकी सबसे श्रेष्ठ माधुरी ब्रज में ही स्फूर्ति होती है और कहीं नहीं, क्योंकि ब्रजवासियों का अनुराग असीम परिवर्धित होकर के बढ़कर असीम रूप में वहां पर बढ़कर के उस माधुर्य को वहन करना है। कृष्ण में माधुर्य है किंतु गोपियां न रहे तो उनका माधुर्य चरम स्थिति तक नहीं जाए, और उसको यदि गोपियां हैं और यदि गोपियों का अतिरिक्त दूसरा है, उनमें जावद आश्रय वृत्ति नहीं है। ये जावद आश्रय वृत्ति ही महाभाव कहलाती है। ये जावद आश्रय वृत्ति गोपियों के अतिरिक्त कहीं ना होने के वजह से गोपियां उसको इतना आस्वादन करती हैं कि जितना दूसरा नहीं कर सकता। कोई भी चीज यदि प्रीति है तो आस्वादित होती है, जितनी ही अधिक प्रीति है आस्वादित होती है, प्रीति नहीं है आस्वादित नहीं होती। तो गोपियों को जावद आश्रय वृत्ति मैंने जहां तक वो बढ़ सकता है, प्रेम की जहां तक बढ़ने की स्थिति है, एक रबड़ बढ़ता है ना, वह यहां तक बढ़ेगा जहां तक ही वो बढ़ सकता, उसके बाद में खींचने से क्या होगा, टूट जाएगा, किंतु वो प्रेम टूटेगा नहीं, किंतु बढ़ने की अब कोई स्थिति नहीं, वहां तक बढ़े ये गोपियों में है और किसी में नहीं है। इसलिए सबसे अधिक कृष्ण के इन चारों माधुरियां का वो आस्वादन रसास्वादन करती हैं। साधारणतः इसी असमूर्ध आस्वादन की जो प्रवृत्ति है, जिसको कहते हैं जावद आश्रय वृत्ति, इसी का नाम महाभाव है। कृष्ण है रसराय, गोपियां हैं महाभाव, जावद आश्रय वृत्ति, दोनों के मिलने पर ही रसराज महाभाव अनुभव करने वाली हैं गोपियां, और कृष्ण रस के स्वरूप हैं। किंतु इसमें एक ऐसा भी है, जब कृष्ण ही जावद आश्रय वृत्ति बन जाते हैं और गोपियां बन जाती हैं रसराज, ऐसी भी स्थिति, दूसरों के लिए यह संभव पर नहीं है। इसलिए जब ऐसा होता है तो कृष्ण उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, तब उनकी सेवा परिचर्या इत्यादि में लग जाते हैं। दूसरे किसी में ऐसा नहीं होता, इसलिए ऐसा सोच भी नहीं सकता। एक लंगड़ा लड़का है, छोटा सा, कुछ काला भी है, बोल भी ठीक से नहीं कर, बोल नहीं पा रही है। उसको दूसरा स्नेह करेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, किंतु उसकी मैया क्या करेगी, स्नेह करती है, क्यों? उसके प्रति अनुराग है। यह अनुराग ही है मूल चीज, यह अनुराग गोपियों में जावत आश्रय वृत्ति तक है। गोपिका दर्शन कृष्ण जे आनंद है, गोपियों को दर्शन करने से कृष्ण का जो आनंद होता है, तहां भाई ते कोटि गुण गोपी आस्वादक, उससे कोटि गुण जब गोपियां कृष्ण को देखती हैं तब उनमें प्रेम अधिक प्रभाव होता है, क्यों? वो उसी की वृत्ति ही है, इसलिए उनमें होता है। इसलिए गोपियों के महाभाव के विक्रम से, महाभाव का विक्रम प्रभाव है, इसलिए कृष्ण की असमोर्ध माधुर्य, कृष्ण का असमोर्ध माधुर्य उच्छलित होता है उनकी दृष्टि में। और लोगों की दृष्टि में कंस को देख करके वैसा होगा, अक्रूर को हो जाएगा, उद्धव जी को हो जाएगा। ये कह रही हैं मथुरा की नागरियां स्त्रियां, इनको क्यों नहीं हो जाता, वही श्री कृष्ण को तो देख रहे हैं, किंतु उतना उनका प्रेम ही नहीं है जो उतना देख सके, इसलिए वो अफसोस कर रही हैं, हम लोग उस रूप में नहीं देख रहे, देख रही हैं साक्षात, किंतु विचार करके देख रही हैं ये वैसा तो प्रेम नहीं, क्यों नहीं? अब इसके लिए कोई उत्तर नहीं, उत्तर है महाभाव निग्न है। एक चीज को बड़े प्रेम के साथ में कोई खा रहा है, क्यों? भूख है। और एक आदमी भूख नहीं है, वो क्या करेगा? सूंघेगा, देखेगा किस चीज का बना है, क्या है, कौन बनाया, कहां से आई चीज, ये सब करेगा, नाकुर नुकुर करेगा, कहे ये ठीक बना ही नहीं, दुबले पतले हेंगले हवा में उड़ने वाले जैसे बांके है, इनको भूख ही नहीं लगती। इसलिए कोई चीज का रसास्वादन होता है खाने के समय में, भूख खूब जोर की लगी हो, जैसा तैसा कोई भी रूखड़ा रूखा सूखा जैसा मिल जाए, बस तृप्त हो जाता है। और कहते हैं कृष्ण के माधुर्य को आस्वादन के प्रभाव से महाभाव भी वृद्धि पाता है। महाभाव वृद्धि नहीं होना चाहिए, किंतु महाभाव भी बढ़ जाता है। महाभाव माने गोपियों के हृदय में जो महाभाव, वो बढ़ करके ऊपर में बढ़ने की ठाई नहीं, बढ़ने की जगह नहीं, फिर भी बढ़ता है। वो जो बढ़ता है तो अब उसमें मादन मोदन नित्य नए नए रूप में बढ़ता है, भावनाएं उनकी अपने तरह की होती हैं, हम लोग कभी कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते तनिक भी, क्योंकि अभी श्रद्धा ही नहीं रही। गुरु वैष्णव में भगवान में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा के बाद में अनर्थ रहित होने पर कुछ निष्ठा आएगी, कुछ श्रद्धा है आंशिक, कुछ निष्ठा भी आंशिक है, अभी रुचि प्रगाढ़ रूप से नहीं आ रही, चित्त की स्थिरता ही नहीं, अभी क्या करें कैसे करें क्या करें ये भी नहीं है। जब ये सब हो जाएगा, भाव आएगा, अप्राकृत भाव, वो अपने हाथ में नहीं, ये कब आएगा, वो किसके हाथ में है? भगवान और भक्तों के, ऐसे भावुक भक्तों के, उनकी कृपा से होगा। अपने की बात, अभी हम कसरत करके कीर्तन में नित्य करते हैं, भाव दिखलाते हैं, और वो तब अपने आप आने लगेगा जब भाव उत्पन्न होगा, अपने आप। उस समय में कोई वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से महाभाव की उत्कर्ष, महाभाव का उत्कर्ष का जगह नहीं है उसमें, तनिक भी नहीं, किंतु फिर भी उसमें उत्कर्षता बढ़ जाती है। इसलिए वह उत्कर्षता उसमें आकर उसके अद्भुत प्रभाव से ही स्वजन आर्य पथ इत्यादि को, जो बड़ा भारी जिनको पार करना कठिन है उसको भी पार कर जाएंगे। वही कृष्ण है ब्रज से यहाँ आए ना? कृष्ण मथुरा में बंसी किस लिए नहीं लाए? डर करके नहीं लाए, बदनामी हो जाएगी। क्यों बदनामी होगी? अधिकारी नहीं। यदि मथुरा में हमने बजाए तो मथुरा की कोई भी रमणी हमारी बंसी की तान पर अपने पति पुत्र भाई बंधु किसी को छोड़ करके नहीं आएगी, तब उसमें हमारी बंसी की बड़ी भारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए नहीं साथ। ये कार्य आती, ये कार्य कृष्ण का रूप तो देखा, किंतु अपने पतियों को छोड़ करके इनके यहाँ आई कृष्ण के यहाँ मथुरा में नहीं, द्वारका में होगा। यदि ऐसी बात होती ना, यदि मोर मुकुट और ये सब धारण करते और करते भी, तो द्वारकापुरी में लाखों कोटि तो यदुवंशी थे, सब उनकी पत्नियां यहाँ पर आ जाती कृष्ण के पास में, कोई भी नहीं जाती, मर्यादा में इतनी बधी हुई है संभव। इसलिए न तो बंसी की जरूरत है, न ये सब मोर मुकुट की जरूरत है, न कुछ बेकार की, कोई है ही नहीं ऐसा। सब में डर है, आर्य धर्म धर्म का डर है, लोक है, लज्जा है, उनमें इतना ये सब चीजें हैं। जाओ दासी तक उनका प्रेम आया ही नहीं, महाभाव तक आया नहीं, इसलिए ये संभव पर नहीं। क्या देखा जाता है? महाभाव की एक झलक देखी जाती है, किंतु अपने घर में ही, वो कृष्ण की रानी में हुआ थोड़ा सा ना, किंतु और जितनी गोपों वहाँ के जदुवंशियों की स्त्रियाँ थी ना, सात्विकी थे और सब थे। यहाँ पर तो उनके भाई थे सुभद्र जी, उनकी पत्नी कुंदलता थी, वो तो आती थी कि नहीं राश में आती थी ना। वहाँ पर कोई किसी की भी कोई पत्नी कोई भी रमणी आएगी वहाँ, चाहे बंसी बजाएं चाहे लाख न खड़ा करें कुछ भी करें, कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ धर्म का भय इतना अधिक है, नहीं होगा और कहीं संभव नहीं है। अच्छा एक बात और समझो, कोई जहाँ भी रहे, जेखाने वैष्णवगण सही खाने वृंदावन, ये बात ठीक है ना? जेखाने वैष्णवगण ठीक है, कैसे पता है, कैसे कहा? तुमने सुन रखा है, इसलिए अनुभव हम लोगों को नहीं, अनुभव हम लोगों को कि ये बात ठीक हो सकती है। क्यों? कि जहाँ पर आते हैं वहीं पर वैसा भाव उनका होता है, कीर्तन वैसे करने लगते हैं ना? ऐसे हरि कथा होने लगती है, वृंदावन की स्फूर्ति होने लगती है। ब्रज भाव को वहाँ पर कुछ प्रकट जैसे कर देते हैं, यही तो कारण है, लोग उस भाव में कुछ आ जाते हैं। किंतु एक चीज है, वहाँ पर उपलब्धि नहीं होगी उस चीज की, उपलब्धि मैंने डायरेक्ट अनुभूति, वो वृंदावन में होगा। और जगह मैंने वहाँ पर स्फूर्ति हो सकती है, आ रहा है समझ में कुछ, स्फूर्ति तो हो जाएगी, ध्यान भी हो जाएगा, स्मरण भी हो जाएगा, कुछ भाव भी ऐसे आ सकते हैं। जैसे हम लोग अभी या कल हमने वृंदावन में सीता जी का वनवास का थोड़ा सा, विरह का थोड़ा सा बतलाया, सब लोगों के आंखों में आंसू आ गए, बहुत से लोग रोने लगे, हम भी रोने लग गए, हुआ किंतु अनुभूति होगी, वो तो एक थोड़ा सा भाव से इतना हो गया, और सचमुच में अनुभूति होगी जिस समय सीता जी जा रही हों, पाताल में प्रवेश कर रही हों, जिसमें शपथ ले रही हैं और पृथ्वी को बुला रही हैं, और जिसमें में वो गई हैं पाताल में, और रामचंद्र जी को जो दशा हुई, या गोपियों को कृष्ण के विरह में जैसी दशा हो रही है, भूल गई और कृष्ण जैसा कार्य कर रही, अनुभूति हो रही, कुछ सुन लिया, बस कुछ भावना है, किंतु वृंदावन में ये अनुभूति भी हो जाएगी और जगह में स्फूर्ति होगी। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं वो वृंदावन में उसको आना होगा, वहीं पर उसकी स्थिति होगी, चाहे जैसे हो, जहां पर वृंदावन प्रकट है, कृष्ण की लीला हो रही है, उसमें उसको जन्माएंगे लाएंगे, जैसे होगा तैसे होगा, तब अनुभव होगा, ऐसे अनुभव
होगा।
होगा होम वृंदावन, वो दो अलग अलग है, वही तो कह रहे हैं। वृंदावन के अतिरिक्त चाहे भवन हो चाहे गोलोक वृंदावन, इसके अतिरिक्त और किसी जगह में उसका अध्ययन हो सकता है, स्मृति हो सकती है ना? जैसे गोप कुमार वहां से आने पर भी पुरी में जाना चाहते हैं, किंतु उनको अनुभूति होगी यहीं पर ब्रज में ही, और कहीं अनुभूति नहीं। अनुभूति माने के उपलब्धि माने साक्षात्कार वही वृंदावन में होगा, और जब हमें स्फूर्ति होगी, ध्यान होगा, आस्वादन कुछ हो सकता है, किंतु वृंदावन में उसकी स्फूर्ति होगी, यही सनातन गोस्वामी जी कह रहे। इसलिए और जब हमें यहां तक द्वारकापुरी में वे कृष्ण रहे, मथुरा में भी हैं, कुछ कुछ अनुमान कर रही हैं, किंतु अनुभूति यहां नहीं हो रही है। वो गोपियों जैसा ऐसा कर सकेंगी? सबको छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए यहां पर कृष्ण है आ जाएंगी, राजभवन में कृष्ण वहां पर आएंगी? न कृष्ण भी ऐसा उद्यम करेंगे। मथुरा में या द्वारका में कहीं भी ये संभव पर नहीं है। यद्यपि महाभाव की अनंत वैचित्री है, वैचित्री मैंने क्या, तरह तरह से उसके विलास महाभाव के, जैसे जल्प प्रजल्प सुजल्प अभिजल्प इत्यादि, ये सब 12 प्रकार के। अच्छा, उसमें भी एक एक जो जल्प है वो हजार हजार प्रकार के हो सकते हैं, हजार प्रकार के उनकी चेष्टाएं हो सकती, विरह में एक, मिलन में एक, कहने कैसे कैसे उनकी विचित्रताएं हैं। तथापि राधा में समस्त वैचित्रों का समाहार, समाहार माने उसमें सब अंतर्भुक्त हैं, सभी ये सब मिलकर के राधा जी हुई हैं, अथवा राधा जी में वो सब है, वो अलग अलग सखियों का रूप धारण कर, सब वैचित्री उनमें है एक, क्योंकि वो महाभाव की स्वयं रूप है, जैसे कृष्ण स्वयं रूप है, और उस स्वयं रूप से तदेकात्म रूप आवेश अवतार, और तदेकात्म के अंतर्गत तदेकात्म के अंतर्गत में प्रकाश वैभव, स्वयं प्रकाश, स्वयं वैभव, प्रकाश वैभव, विलास, तरह तरह के उसमें व्यूह है, और न जाने क्या क्या सब है, और आवेशावतार ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, और सब व्यास नारद पृथु कपिल परशुराम, ये सब एक एक भाव का जबकि आवेश होता है तो उसको आवेशावतार कहते हैं। और जब भगवान सच्चिदानंद होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए जब उनका अंश अवतरित होता है तो उसको स्वांश या तदेकात्म रूप कहते हैं। तो जिस प्रकार से कृष्ण स्वयं रूप है, स्वयं रूप में सब जितने भी अवतार हैं, तदेकात्म रूप आवेश इत्यादि सभी उनमें है, और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कृष्ण से ही ये समस्त लोगों का प्रकाश हुआ है, और उनमें ही सब है, इसलिए राधा में भी अखिल नायिकाओं का सब लक्षण उसमें प्रकाशित है। राधा जी जितनी प्रकार की नायिकाएं हो सकते हैं, अंततः जो साधारण रूप में 364 प्रकार का जो बतलाया गया है, 360 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है, वो सब अकेले राधिका जी में है। इसलिए कृष्ण के चित्त को आकृष्ट करती, यदि उसमें से एक भाव कम हो गया ना, और वही भाव यदि कृष्ण चाहते हो तो कैसे पूरा होगा। इसलिए और गोपियों में 360 भाव नहीं है, इसलिए कभी किसी में कमी हो जाती है, कभी किसी के में कमी हो जाती है, इसलिए कृष्ण को संपूर्ण रूप से मुग्ध नहीं कर पाती। और राधिका जी जो कृष्ण में उठ भावना उठ सकती है, उससे भी बहुत प्रकार की भावनाएं इनके अंदर में। इसे समस्त प्रकार की नायिकाओं का जितना भी गुण है यहाँ पर ये करते हैं। जैसे कृष्ण अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण में जिस प्रकार से अवसर की तरफ जब जब जैसा सुयोग हो आवश्यकता होती है, कृष्ण कभी धीर नायक, कभी धीर ललित नायक, कभी धीरोदात, कभी धीर शांत, एक साथ में सब है, जब जैसा होता है उसमें से प्रकाशित हो जाता है। वैसे श्रीमती राधिका जी में जब जैसे जरूरत होती है तभी ऐसा ही वो बन जाती है। कभी माननी बन जाती हैं, कभी एकदम धीर बन जाती हैं, कभी दक्षिण बन सकती हैं, कभी जैसा। 360 तो ये गिनाए गए हैं, किंतु अखिल अखिल अनंत भावनाओं की वो मूर्तिमान विग्रह हैं। इसलिए कृष्ण का रसास्वादन कितना करो। इस तरह से सर्व नायिकाओं के शिरोमणि श्रीमती राधिका जी में समस्त नायिकाओं के गुण हैं। इसलिए मादनाख्य भाववती, ये मादनाख्य भाववती और राधिका के अतिरिक्त किसी में नहीं। जब संपूर्ण नायिका का गुण जब श्रीमती राधिका में प्रकाशित होता है तब उसको मादनाख्य भाव कहते हैं। यही विरह में एक और मिलन में एक मादन और एक मोदन कहलाता है। क्या उसकी अवस्थाएं हैं? चैतन्य महाप्रभु कुछ जगत में दे सकते थे, इसके बाद में दूसरा कोई नहीं हुआ जिनमें ये सब भाव हैं, और उसको केवल उन्होंने दिखलाया, और स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी ने टेस्ट किया, क्योंकि वो राधिका जी की सहेली है, बस और कोई नहीं समझ सका। आधे आधे कुछ हुए। रूप गोस्वामी जी को पीछे से उन्होंने कहा जी सभी मिलकर के शक्ति संचरित करो, यह बच्चा हमारे भावों को जगत में प्रकाश कर सके, इसलिए उन्होंने प्रकाशित किया। मदनाख्य महाभावती राधिका के विलास से असंख्य लीलाओं का जुगपत अनुभूति उनको एक साथ में होती है। किलकिंचित इत्यादि भाव का बतलाया, उसमें 7 प्रकार के भाव एक साथ में आते हैं, और राधिका जी ने ना जाने कितने असंख्य भाव किया एक साथ में। जब जैसी इच्छा होती है योग माया की, ऐसे ही उनको प्रकाश करके कृष्ण को आनंदित करते हैं। स्फूर्ति के द्वारा नहीं, काय व्यूह के द्वारा नहीं, स्वयं कृष्ण कार्तिक साक्षात संपन्न भैया था, यह जो भाव होता है काय व्यूह के द्वारा नहीं अथवा स्फूर्ति के द्वारा नहीं, उनको साक्षात कृष्ण के द्वारा संपन्न। और कभी भी राधिका जी को कृष्ण नहीं छोड़ पाते, चाहे विरह हो और चाहे मिलन हो, वियोग हो अथवा मिलन हो। जैसे राधिका जी कृष्ण के विरह में वृंदावन में या नंदगांव समझो, ब्रज ही समझो, मैं कहीं बैठी हूँ, चिंतन करते 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 एकदम विभोर हो गए, और उनको ऐसे अनुभूति हुई हठा ये कोई पीछे से आकर के उनका आंख बंद कर दिया। तो वो करिए ललिता तो नहीं छोड़, जब तक ये अपना नाम नहीं आएगा तब तक तो छोड़ेगा नहीं, आंख बंद कर रहे। विशाखा, चित्रा, कुंदलता सब नाम बोल रहे, किंतु वो खुलती नहीं आंख। तब फिर कह दिया उन्होंने श्याम सुंदर, बस आंख को खिलखिलाते हुए आकर के और बैठ गए उस समय ये समझ रही है ये स्फूर्ति हो रही है। फिर कहती हैं ये आवेश या कृष्ण कायव्यूह के द्वारा मथुरा द्वारका में रहते हुए या मथुरा में रहते हुए कायव्यूह के द्वारा यहाँ आए हैं। कहते नहीं, ये कैसे हुआ? कहते हैं कि साक्षात यहाँ पर स्वयं कृष्ण कार्तिक साक्षात भाव है, स्वयं रूप के द्वारा होता है, नहीं तो राधा जी को कायव्यूह के द्वारा, स्फूर्ति के द्वारा और किसी प्रकार से उनको तृप्ति नहीं हो सकती, इसलिए स्वयं रूप में होता है। ये सनातन गोस्वामी जी का अपना अद्भुत सभी विचार है। नहीं तो हम कह सकते हैं महाप्रभु जी वहां पर हैं और यहाँ पर मैया रो रही हो और उनको भोग लगाया, तो महाप्रभु जी कायव्यूह से वहां आ गए, उनको तृप्ति होगी उनको तृप्ति नहीं होगी? उनको तृप्ति होगी यदि महाप्रभु स्वयं आ जाएं, तो महाप्रभु इतना नहीं कर सकते जो स्वयं आ जाएंगे, तो स्वयं आ जाए, ऐसे राधिका जी के लिए समझ। इसलिए स्वयं रूप में कृष्ण सब समय राधिका जी के निकट ही रहते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते, किंतु उनका मिलन में ही विरह भी होता है, योग भी होता है और संभोगमयी लीलाएं अर्थात विलासमयी लीलाएं भी उनकी हुआ करती हैं। इसलिए पूज्यपाद टीकाकार जी, टीकाकार कौन है इस ग्रंथ के? सनातन गोस्वामी। और लेखक कौन है? सनातन गोस्वामी कह रहे टीकाकार कह रहे हैं टीकाकार कह रहे हैं कृष्ण कभी ब्रज देवियों को, ऐसे ब्रज देवियों को जहाँ इतना महाभाव है और इतने जावदाश्य व्यक्ति में पहुंच गई हैं, उनको कृष्ण कैसे छोड़ सकते हैं? यहाँ तक कि विच्छेद काल में भी दर्शन उनका प्रतिरोध नहीं होता है, स्वयं रूप कृष्ण ही वहां पर आ जाते हैं वृंदावन गोपियों के निकट, और कहीं नहीं आएंगे, किसी के पास में नहीं आएंगे, सखाओं के पास भी नहीं आएंगे, किंतु इनके पास में आ जाते हैं। चैतन्य चरित्रामृत में लिखते हैं, कृष्ण कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वर्ग गोस्वामी के कड़चे को लेकर के, ललिता ना उनके कड़चा, कड़चा माने क्या? जब कोई महाप्रभु की घटना हो अपने साथी साथ में नोट करते हैं जिस भाषा में, श्लोक में के रूप में, उसको कहते हैं कड़चा। महाप्रभु जी कोई लीला कर रहे हैं और झट संत दामोदर जी ने नोट कर लिया, कैसे? अपने कड़चों में श्लोकबद्ध शब्द, श्लोक उनका स्वाभाविक है, हम लोगों जैसा नहीं, जैसे हम पद रचना करते हैं श्लोक करते हैं। वो कवियों की जैसे होता है ना, वो धान की खोई फूटती है ना, ऐसे वो कहेंगे जो कुछ कहते हैं वो एक कविता होती है। ब्रज में जो कुछ करते हैं ना वो गान होता है ना, जैसे कथा गानम गमनम अपि नाट्यम, उनका गमन ही नाट्य है, चलना ही उनका नाट्य है और बोली ही उनका काव्य है, संगीत है। ऐसे स्वर से ऐसे बोलेंगे जैसे सबसे अपने आप काव्य प्रवाहित होता रहता है। तो ये स्वरूप दामोदर जी का ऐसा ही था, हमारे नरोत्तम ठाकुर जी का ऐसा ही था, हमारे प्रेमानंद जी हो गए हैं ना उनका ऐसा ही, गोविंद जी का नाम सुना है, कविराज के भाई थे, भजहु रे मन नंद सीमन नंद नंद अभय चरण अरविंद, ऐसे काली के उपासक थे, फिर पीछे से कृष्णदास कविराज की कृपा से जब श्रीनिवास पंडित के यहाँ श्रीनिवास आचार्य जी के पास गए तो फिर वो जो लिखते थे वो बस कविता ही निकलती थी। राखिते तुम्हार जीवन, कृष्ण कह रहे हैं राखिते तुम्हार जीवन सेवी आमी नारायण, तारे शक्त आमी नीति नीति, आमी नीति नीति तुम्हार सने क्रीड़ा करी आशीना, आमी नीति नीति अथवा आशीय हो सकता है, तुम्हार सने क्रीड़ा करी नीति जाई मधुपुरी, ताहा तुम्हें मानो आमार स्फूर्ति, मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जे प्रेम है से प्रेम परम प्रबल, लुकाइया आमा आने संग कराए तुम्हार सने प्रकटि आनी बस सकता, राखते तुम्हार जीवन, मैं सब समय इसी विषय में चिंता करता हूँ, ये तुम्हारा जीवन कैसे रहे, तुम्हारा जीवन रखने के लिए मैं वृंदावन से चलाया मथुरा मधुपुरी और मधुपुरी से भी चलाया बहुत दूर द्वारका, तुम्हारा जीवन रखने के लिए। और हमने वहाँ द्वारका भी आकर के बहुत से स्त्रियों से हमने शादी का स्वांग रचाया, किसी के प्रति हमारी प्रीति नहीं, स्वांग रचा। स्वांग माने क्या? अभिनय किया, केवल उनको देखने से तुम लोगों की स्मृति होती या तुम लोगों की सब समय स्मृति जगे। इसलिए राधिका जैसी हमने खोजा, विश्व में एक किशोरी मिली जिसका रूप रंग कुछ और स्वभाव राधा जी से मिलता था, वो कौन है? मैंने बस तुम्हारे लिए। और चंद्रावली जैसा रूप गुण और शील देखा, बस रुको नहीं, मैंने खोजा विश्व भर में कहीं नहीं मिली, बस वही मिली। मैं बस तुम लोगों की स्फूर्ति याद के लिए, यादगारी के लिए हमने विवाह के लिए विवाह नहीं किया। इसी तरह से कालिंदी में कालिंदी से शादी की, ज्यामवंती से शादी की, सब एक एक सखियों के अनुरूप देख करके किया। 16,000 ये गोप कुमारियों को के अनुसार 16,000 लोगों को मैंने देखा, देख करके उनसे मैंने शादी। तुम लोगों की यादगारी, यदि तुम लोगों की स्मृति नष्ट हो जाता एक क्षण में, मैं छोड़ दो, एक सेकेंड नहीं लगे। यही सुन करके सत्यभामा जी का कुछ होश ठिकाने आए, नहीं तो वो समझ रही थी कि हमारे जैसा रूप लावण्य में कौन बड़ा है। वही कह रहा है, तुम लोगों का केवल जीवन रखने के लिए ही हमारी सारी चेष्टाएं होती हैं, इसलिए मैं नारायण की सेवा करता हूँ, भजन करता हूँ, अर्चन आराधना करता हूँ, जिससे कि उनकी शक्ति हमारे अंदर में संचरित हो जाने से, उन्हीं की शक्ति से मैं रोज रोज प्रतिदिन तुम्हारे सामने क्रीड़ा करूँ। मैं वहाँ द्वारका से आ जाता हूँ और जाई नीति जाई मधु और मधुपुरी लौट जाता और फिर आ जाता हूँ। तहाँ तुम्हें मानो मोर स्फूर्ति, तुम उसे स्फूर्ति समझती है जैसे मैंने ऐसे ही देख लिया, किंतु स्फूर्ति नहीं है। तो यह काम मैं अपने कायबुह के द्वारा किया, एक शरीर के द्वारा मैं मधुपुरी रहा, दूसरी शरीर के द्वारा मैं वृंदावन में आ गया, ऐसा भी नहीं। मैं स्वयं जब तक नहीं जाता तब तक मैं, इसलिए मैं स्वयं जाता हूं। मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जो प्रेम है, हमारे सौभाग्य से तुम्हारा हमारे प्रति जो प्रेम है, यह मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझे से प्रेम करती हो, इतना प्रेम करो, यह मेरा सौभाग्य। तो उससे से प्रेम परम प्रबल, वह प्रेम हमको पागल कर देता है और सब समय इसीलिए तुमसे मिलने के लिए आकर उत्कंठित रहता हूँ। मैं वहाँ से यहाँ पर आता हूँ, लुकाइया अमान, हमको वहाँ के लोगों से छिपा करके यहाँ पर प्रकट कर देता है। संग कराए तुम्हारे प्रकट ही आनी बेस, संग कराता है अभी छिपा करके, कोई नहीं जानता जी आ गए, मैं छिप करके लुक करके आ। अब कुछ दिनों में मैं स्वयं आ जाऊंगा। श्लोक में अमुष्य रूपम गोप्यस तपः किमाचरन् यमद्मुष्म रूपम। अमुष्य किसको कहते हैं? ये एकदम उंगली उस पर रख दिया, ये करता अमुष्म। तो कह रहे हैं अमुष्म शब्द का प्रयोग ब्रज सुंदरियों के ब्रज बिहारी जो लावण्यमय स्वरूप सिद्ध महाभाव नेत्र दर्शन कर या था कि वही जिन मथुरा नगरी गण देख करके वो वहीं से भाव नेत्र के द्वारा गोपियों को देख रही हैं और कृष्ण को ब्रज कृष्ण को देख करके कृष्ण के प्रति गोपियों का अनुराग देख रही हैं और इसको कह रही है ये, मानो ये सब ब्रज यहीं पर उतर आया उनके लिए। और कृष्ण को देखा कैसे? मोर मुकुट धारण किए हुए। लावण्य का सार है विश्व में, गोलोक ब्रज मंडल से लेकर के यहाँ तक जितने भी अवतार स्वाम सदैक आत्मरूप इत्यादि हैं, सबका लावण्य सार यहाँ आ गया। कहाँ? कृष्ण में आ गया, उस ब्रज में। और उस लावण्य सार को जैसे गोपियां पी रही हैं, देख रही हैं, मैं भी तो देख रही हूँ कि तो मैं क्यों नहीं इतनी पी रही, अनुभव नहीं उनको हो रहा है। इसलिए गोपियां ने कौन सी ऐसी तपस्या की जो हम देखने पर भी उस रूप को नहीं पाए? अभी मान लिया कि कृष्ण यहाँ आ जाए ना, देखेंगे हम लोग कि हाँ सुंदर है, क्योंकि कुछ श्रद्धा तो है ही है। अभी श्रद्धा से तो आगे बढ़ा नहीं, निष्ठा और रुचि आसक्ति भाव तो हुआ नहीं, इसलिए हम देखेंगे। कुछ देर देखने के बाद में हमारा मन हट जाएगा, भूख लगेगी हमें, प्यास लगेगी, और हम कहेंगे जी भाई अब आप पधारिए, इनको ये दो, अंत में क्या देते हैं, पुष्पांजलि दे करके और शयन या क्या कहते हैं, बुलाते हैं ना, स्वागतम स्वागतम और विसर्जन। क्योंकि हम अब प्रभु आप जाइए, अब आपको विश्राम करने का समय, मैंने हमको विश्राम की जरूरत है और क्या करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर मन प्रेम अभी सब कुछ आ गए, और नहीं तो लड़ाई झगड़ा भी उनसे कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे। यदि अभी गुरु दूर है ना, इसलिए लड़ाई झगड़ा हम लोगों से नहीं होगा। आज यदि खूब निकट रहते एकदम पास पास में ना, तो रोज नहीं तो दो एक दिन में जरूर कुछ ना कुछ अंततः बात बतंगड़ हो ही जाता है, या मुख फुला लेते उनसे। किंतु इसीलिए वो लोग दूर रहते हैं, यही कारण। और कृष्ण यहाँ पर बैठ करके भी कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोले इसी कारण से। यदि कुछ पानी मांग लेते ना, कहते भैया रात है अब पानी हमको कुछ गर्म चाहिए, तो देंगे हम, एक दिन देंगे, दो दिन, फिर नहीं देंगे। जैसे मैं ही यदि किसी को रोज रोज कुछ कहने लगे तो ये तंग कर मारता है, क्योंकि हम लोगों में अंदर में वो अभी वृत्ति है ही नहीं है, इसलिए जरूर होगा ये। अभी हम लोगों का स्वभाव मन है ना, नई नई चीज चाहता है, नया नया प्रेम करता है, नया नया अनुसंधान कुछ करता है, कुछ है? उसको पेट ही नहीं भरता। अभी गुरु जी है ना, तो जब देखेगा तब गुरु जी को छोड़ करके और कोई दूसरा कोई इससे अच्छा होना वो उनमें भी मन जाए। ऐसा अभी हम लोगों का मन ही अभी ऐसा है, ये बद्धावस्था का ही ये दोष किसी का नहीं, बद्धावस्था और माया का ये दोष है। तो इसलिए कहते हैं कि अमुष्मा गोपियां, वो मथुरा की नगरियां देख रही हैं कृष्ण को, गोपियों को देख रही हैं, अपने को भी देख रही हैं, और देख रही हैं जैसे हम लोग हैं पाठ सुन रहे हैं। पाठ सुनते सुनते कोई अच्छा ऐसा प्रसंग आया, देखा कि भाई उसके नेत्रों में आंसू कुछ गिरने लगे, यही तो प्रेम का चिन्ह है, कुछ आंसू गिरने लगे, छल छल नहीं गिरते तो छल छलाने लगे। हमने देखा जी तो हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और इसकी आंखों में पानी कुछ है, भाई हमारा भी ऐसा है। भागवत में भी तो लिखा है ना, क्या लिखा है, तदश्मशारम हृदय वतेदम यद कृष्यमान हरिनाम धेय न विक्रियता यदा विकारो नेत्रे हर्ष नेत्रे हर्ष जलम हर्ष। हम देखते भाई उनको कुछ आसन टासन नहीं दिया, एक तो नाम दो तो भाई, एक तो आसन टासन। तो देख रहे हैं कि इनके अंदर में प्रेम का विकार हो रहा है। अच्छे महाप्रभु जब थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख रहे हैं और उनके तरह तरह के भाव आ रहे हैं, सबको ऐसा भाव आता होगा। हमने गुरु जी को नित्य करते हुए देखा, क्या मधुर लावण्य आंखें, आंखों की ताराएं ऊपर में है, दंड हाथ में, क्या ताल के साथ में कैसे यहां से वहां तक नृत्य कर रहे हैं भावाविष्ट होकर। ऐसा नृत्य हमने कभी देखा ही नहीं जीवन, कभी इच्छा होती है जी वैसे ही नृत्य करें, हो जाएगा वैसा भाव रहे तब तो हो। कभी कभी एकदम कहते हैं ना, जैसे थोड़ा सा वो कृष्ण की वो जो लीला मैं उनको सुना रहा था, जो ओखल से बंधे हुए और जाकर के पेड़ गिर गए हैं दाम बंधे, और सुनते एकदम विकल होकर के रोने लग गए। हम लोग ऐसा हो सकता है, क्यों? उनमें वो आभार है, इसलिए ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर में वैसा आभार नहीं है, देख रहे हैं उसी कृष्ण को किंतु हो नहीं रहा है, चाहती हैं। अच्छा अब उनके अंदर में भावना, अच्छा कौन सी ऐसी तपस्या करूं जैसे कि हमारा भी भाव ऐसा, अब जैसे हम लोग अभी चाहते हैं ऐसा ही हम लोगों का भाव हो जाए, किंतु हो नहीं रहा है। हाँ भाव भजन करते 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 यदि निष्कपट रूप से करें, निश्चित चित्त को स्थिर करके अक्रमशः श्रद्धा निष्ठा आसक्ति इन सब को पार करें और भाव का तनिक भी आवेश भी आ जाए, आभास भी आ जाए, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसलिए मथुरा नागरी गण ने देख करके भी उनके हृदय में कुछ अनुभूति नहीं आई, तब पर यह हाय है, ये देख करके भी हमें नहीं, ये कृष्ण को देख रही है और ये भाव नहीं आ रहा, धिक्कार है हम। इसलिए वो अदस शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया, ये अदस शब्द है यह, अर्थात तो ऐसा प्रेम हमें अंदर में नहीं हुआ, अर्थात साक्षात देख करके भी निर्देश नहीं कर पाती हैं कैसा ये प्रेम अनुभव हृदय में नहीं हो रहा है। अच्छा उस समय में दुर्योधन आ जाता है और देखता तो उसके अंदर में कृष्ण के प्रति कैसी भावना आती, कर्ण आ जाता या और आ जाते, अर्जुन भी आ जाते उस सभा में तो उनको कैसा होता, सखा का भाव आ जाता। किंतु